दिन भर 12 जुलाई गुरुवार, सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कायम रहेगा गठबंधन।
कुछ नहीं होने वाला भैया, लाल टपकाना बंद कर दो, नीतीश जी और हमारा गठबंधन बिहार के अंदर 40-40।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल करने पर सियासी हंगामा।
आप संविधान की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये तो लोकतंत्र के प्रति आपकी घृणा भाव।
नेटो सम्मेलन खत्म होने के बाद बदले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर।
Thank me. There's a great collegial spirit in that room that I don't think they've had in many years.
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति के हिसाब से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं को आज रात अपने आवास पर भोज के लिए बुलाया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप क्वीन एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री टेरिजा मे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेटो के सदस्य देश अपना सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सदस्य देशों ने अपने सालाना सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2% से अधिक सैन्य जरूरतों पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम पर कम सैन्य खर्च करने का आरोप लगाया था। ब्रिटेन की सरकार ने आज एक ब्लूप्रिंट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अगले वर्ष मार्च में यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद दोनों के रिश्ते कैसे होंगे। नेटो सम्मेलन के लिए ब्रसेल्स पहुंची ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने संवाददाताओं से कहा कि जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उनसे लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी।
We're delivering on the vote of the British people to take back control of our money, our laws and our borders, and that's what our proposal does.
हम वो कर रहे हैं जिसके लिए ब्रिटेन के लोगों ने हमें अपना वोट दिया। हम अपने धन, कानूनों और सीमाओं पर दोबारा अपना नियंत्रण चाहते हैं। हम अपने लोगों का जीवन और उनकी आजीविका सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये थी ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आरोप लगाया है कि संसदीय चुनाव से पहले पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समर्थन में रैलियाँ न कर सकें। नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में हैं और शुक्रवार को पाकिस्तान लौट सकते हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। नवाज शरीफ का कहना है कि वो पाकिस्तान वापसी करेंगे ताकि सजा के खिलाफ लड़ सकें और चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार कर सकें। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि सीरियाई सैनिकों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले दक्षिणी शहर डेरा के कुछ हिस्सों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया है। ये सीरिया का वही शहर है जहां 7 वर्ष पहले राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। डेरा शहर पर दोबारा नियंत्रण के लिए सीरिया को रूस की मदद मिल रही है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यमन में हुए युद्ध अपराधों की जांच की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन प्राप्त यमन के स्थानीय बलों ने लोगों को प्रताड़ित किया, उनके साथ बलात्कार किया, उन्हें मनमाने तरीके से गिरफ्तार और जान से भी मारा गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट और आरोपों को गलत बताया है। अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान की संसद ने मतदान के जरिए मौजूदा राष्ट्रपति सल्वा कीर का कार्यकाल वर्ष 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। दक्षिण सूडान बीते लगभग 5 वर्ष से गृह युद्ध की चपेट में है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। बीते साल जुलाई में बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पहली बार पटना पहुंचे। वो ऐसे समय बिहार पहुंचे हैं जब पिछले कुछ दिनों से एनडीए में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अमित शाह ने कहा कि जेडीयू के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन अटूट है। बीजेपी अध्यक्ष ने और क्या क्या कहा और उनकी बातों को जानकार किस तरह से देख रहे हैं, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिन के दौरे पर आज सुबह पटना पहुंचे। पटना में संघ ध्वनि से लेकर बैंड की धुनों के बीच उनका भव्य स्वागत हुआ। बिहार में बीते साल जुलाई में एनडीए सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली बिहार यात्रा है, मगर अपनी सरकार के शासन में वे ऐसे वक्त में पटना पहुंचे जब बीते करीब सवा महीनों से सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान देखी गई। गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठे, ऐसे में उन्होंने पटना के बापू सभागार में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन को कुछ नहीं होने वाला।
अब उनकी टिक-टिक लगी है, ये झगड़ा हो जाएगा, वो झगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भैया, लाल टपकाना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। नीतीश जी और हमारा गठबंधन बिहार के अंदर 40-40
तीन दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि बिहार में जदयू भाजपा में कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर आज पटना में अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल को निशाने पर लेने, बिहार में गठबंधन को अटूट बताने के साथ साथ उन्होंने भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनने की खबरों को भी महत्वहीन बताया। आज बिहार के राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा इंतजार इस बात को लेकर था कि अमित शाह नीतीश कुमार यानी जदयू से संबंधों को लेकर क्या कहते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन को अटूट बताया, लेकिन जानकारों का कहना है कि सीट बंटवारे के बाद ही एनडीए की एकजुटता की सही तस्वीर सामने आएगी। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं,
तो आने वाले दिनों में ही ये साफ हो पाएगा कि जो सीटों की संख्या को लेकर जदयू के हिस्से कितनी सीटें मिलती हैं, फिर मान लीजिए कि एनडीए में और भी दल है उनके पास कितनी सीट होगी, तो सीट को लेकर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जिसको लेकर ये पता चल पाएगा कि यह गठबंधन जिसकी दावेदारी दोनों ही ओर से की जा रही है कितना अटूट रह पाता है।
अमित शाह ने आज पटना पहुंचकर सबसे पहले नाश्ते पर नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद इसका कोई विवरण साझा नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। सुबह की मुलाकात के बाद रात के खाने की मेज पर एक बार फिर अमित शाह और नीतीश कुमार मिलेंगे। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
ये तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, जो 2019 लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए बिहार में है। कांग्रेस ने भी 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यानी कल मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। उनकी इस विशेष बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री सालेह शरीफ भी मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले बीबीसी स्टूडियो में मैंने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे राहुल गांधी का उद्देश्य क्या था।
ज़रूर राहुल जी के दिमाग में 2019 इलेक्शंस हैं, और दूसरा जहाँ तक ये इलेक्शन के दायरे में मुझे बुलाया था, पहले जो हमारी राहुल जी से बात होती थी, मैं एकेडमिक था, मैं अपनी स्टडी शेयर करता था, वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे उस वक्त कोई पॉलिटिकल इवेंट से रिलेशन, तो इस वक्त वो पॉलिटिकल इवेंट से रिलेशनशिप है जो हमें बुलाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर तरह के मुसलमान से बात करेंगे और आप इंटेलेक्चुअल हैं, हम आपके बारे आपके आइडियाज़ जो हैं, आपके व्यूज़ जो हैं, विचार जो हैं जानना चाहेंगे, दैट इज़ नंबर वन। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुसलमान तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो उस वक्त हमने कहा नहीं साहब, पिछले 3-4 साल से तो कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम्स के इश्यूज पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है, पोजीशन नहीं लिया है। ऑल दो लिंचिंग वगैरह के बारे में ट्वीट्स वगैरह में राहुल गांधी थोड़ा सपोर्ट में आते हैं, फिर भी मुस्लिम वर्ड नहीं लिखते। तो हमने इसके बारे में कहा तो उन्हें कहा कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल थॉट की। तो अब ये एक ऐसे पोजीशन पे हैं कि अब वो डायरेक्टली मुस्लिम इशू पे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकल रीज़न दिए, जो उनकी दादी के ज़माने में वोटिंग स्ट्रक्चर होता था, मुसलमान के डिस्कशन होते थे और पिताजी के वक्त जो इंटरेक्शंस होते थे उसके बारे में उन्होंने चीज़ें तवज्जो में लाई। और ये एक चीज़ ज़रूर कही उन्होंने कि इस बार जो अब जो कांग्रेस पार्टी जो है उसका डिसीशन मेकिंग स्ट्रक्चर बहुत बदल चुका है, यंगर जनरेशन उसके अंदर ज़्यादा भागीदारी ले रहा है, जो हमें भी बहुत पसंद है।
जो बुद्धिजीवी थे, आप थे, जो बाकी आपके साथ और उस मीटिंग में शामिल थे, क्या उनसे ये सुझाव लेने के लिए की गई थी कि जो मुस्लिम हैं, जो कि हमसे थोड़ा दूर जा चुके हैं किन्हीं भी वजहों से, उनको हम फिर से वापस लाएं?
बहुत अच्छा सवाल है आपका, मगर कल का डिस्कशन के दायरे में ये बात हुई ही नहीं। और हम जब गए तो पहले ही हमने उनको एक प्रस्ताव रखा कि हम कोई डिमांड लेके नहीं आए, और ऑब्वियसली उस साइड से भी कोई डिमांड नहीं था, ये तो चर्चा थी, मैं उसको वर्ड दे रहा हूँ, ये कॉफी पे चर्चा थी। मगर ये क्या राहुल जी सोच रहे हैं कि मुसलमानों को बात करने से, हमारे जैसों से, क्या उनको वोट मिलेंगे? मुझे लगता है कल की मीटिंग का पर्पस वो नहीं था। कल का मीटिंग का पर्पस था कि मुसलमानों की सोच क्या है और क्या उनको जो नए इलेक्शंस जो आ रहे हैं, तो इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद उनको किस चीज़ की ज़रूरत पे, क्या चीज़ पे तवज्जो है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स क्या समझ रहे हैं। हो सकता है कि मुस्लिम मौलाना लोगों को भी वो अलग बुलाएं, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में ये कंसल्टेशन जारी करें।
आप सुन रहे थे जाने माने अर्थशास्त्री सालेह शरीफ को। अब बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस बयान की जो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में थरूर ने कहा था कि अगर बीजेपी दोबारा लोकसभा चुनाव जीतती है तो हमें लगता है कि वो संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को तहस नहस करके एक नया संविधान लिख सकती है, और उनका नया संविधान हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होगा। थरूर ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को मिलने वाली बराबरी शायद खत्म कर दी जाएगी और भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। उनके हिंदू पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल करने को लेकर क्या हलचल हो रही है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। शशि थरूर ने अपने बयान पर कायम रहते हुए गुरुवार को फेसबुक पर लिखा कि बीजेपी और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का विचार पाकिस्तान का प्रतिबिंब है, यानी ऐसा राष्ट्र जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को गौण समझे। थरूर ने लिखा है कि ये हिंदू पाकिस्तान ही हुआ जिसके लिए न तो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और न ही ये हमारे संविधान की संकल्पना है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर के इस बयान की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो शशि थरूर के बहाने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
आप संविधान की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये तो लोकतंत्र के प्रति आपकी घृणा भाव थी। राहुल जी, आप लोकतंत्र से भी, भारत से भी नफरत करने लगे हैं, और सबसे दुख का विषय है कि आप इस देश के हिंदुओं से भी घृणा करने लगे। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2008 में हिंदू आतंकवाद नामक शब्द का गठन किया था।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली।
सरकारें आती जाती रहे, बदलती रहे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देगा। हिंदुस्तान एक बहुभाषी और बहुधर्मी मुल्क है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत है और कांग्रेस पार्टी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान। मैं इस मंच से हर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता को गुजारिश करूंगा किस बात का वो ध्यान रखे कि किस तरह के बयान देने।
हालांकि शशि थरूर के बयान की आलोचना भी हो रही थी तो कुछ उनके बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ का ये भी कहना है कि शशि थरूर ने हिंदू पाकिस्तान का इस्तेमाल रूपक के तौर पर किया था, मगर अभी तक ये मुद्दा टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक की बहसों में छाया हुआ है।
बीबीसी संवाददाता विनीत खरे बता रहे थे कि किस तरह से शशि थरूर के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 29 देशों के सैन्य गठबंधन नेटो का सम्मेलन खत्म हो गया है। इस सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि नेटो के अन्य सहयोगी रक्षा खर्च में अपना सहयोग नहीं बढ़ा रहे। ट्रंप का यह भी कहना था कि अमेरिका का ज्यादा खर्च करना न्यायसंगत नहीं है। ट्रंप के इस रुख के कारण नेटो सम्मेलन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि इससे क्या निकल कर आता है, क्या रहा इसका नतीजा, क्या कुछ इससे निकल कर आया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन नेगी।
ब्रसेल्स में आयोजित नेटो सम्मेलन के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर खुशी जताई है कि नेटो में उनके सहयोगी सेना पर अतिरिक्त $33 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने नेटो के सहयोगियों के प्रति नाखुशी जाहिर की थी। उनका कहना था कि जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम जैसे सहयोगी राष्ट्र उस सामूहिक प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके तहत हर एक देश को अपनी GDP का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करना है। प्रेस वार्ता में एक रिपोर्टर ने जब अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या वे बिना किसी कारण के नेटो से अलग हो सकते हैं, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा,
I think I probably can, but that's unnecessary, and the people have stepped up today like they've never stepped up before.
मेरे ख्याल से मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी देश भी साथ आए हैं। और याद रखिए कि वे सभी $33 बिलियन अधिक अदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। नेटो के महासचिव जल्दी ही इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने मुझे इसके लिए शुक्रिया कहा है, बाकी देशों ने भी मुझे शुक्रिया कहा है। मुझे लगता है कि इस बार सम्मेलन में बहुत अच्छी भावना थी, पिछले कई सालों से ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। नेटो सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बार बार दोहराते रहे कि अन्य सहयोगी देशों को भी रक्षा विभाग में आगे बढ़कर आना चाहिए और इसके लिए अपनी GDP का 2% हिस्सा खर्च करना चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति ने जर्मनी के बदले हुए रवैये की भी तारीफ की। बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने जर्मनी पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि वह रूस के प्रभाव में काम कर रहा है। इसके बदले में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भी पलटवार किया था, लेकिन बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्केल ने कहा,
Der amerikanische Präsident hat das gefordert, was ja seit Monaten diskutiert wird, dass die Lastenteilung sich verändert.
अमरीकी राष्ट्रपति ने वही मांग की जिसके बारे में वे पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि रक्षा बजट के भार का अधिक बंटवारा होना चाहिए। हमने इसे स्पष्ट कर दिया है, इसके अलावा बाकी देशों ने भी अपना रुख साफ किया है, यह हमारे ही हित में होगा। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति नेटो सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे ब्रेग्जिट के बाद होने वाले व्यापार समझौतों पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे से बातचीत करेंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ब्रिटेन में उन्हें विरोध का सामना करने की आशंका है, मगर उन्हें वहां बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं।
और अब से कुछ देर पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। भारत में हाल के कुछ सालों में चुनावों के दौरान पाकिस्तान को निशाने पर लेना एक सामान्य सी बात हो गई है, मगर क्या सरहद के उस पार भी ऐसा ही होता है? 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी ने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान में भी क्या भारत का जिक्र होता है, क्या भारत को भला बुरा कहा जाता है। सुनिए ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और उम्मीदवार वोटर्स तक अपना और अपनी पार्टियों का संदेश पहुंचाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी चुनाव प्रचार अभियान का माहौल वैसा ही है जैसा कि भारत में होता है। बड़े बड़े जलसे, तरह तरह के नारे और पार्टियों के तराने, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि जरा हटके है, वो है पाकिस्तान के इलेक्शन प्रचार में इंडिया की चर्चा न होना। चुनाव पर नजर रखने वाले तजियाकार इम्तियाज आलम कहते हैं,
इस वक्त तो पूरी कैंपेन में नवाज शरीफ या एंटी नवाज शरीफ बयानी चल रहे हैं और सारा जो तवज्जो है वो अंदरूनी मामला पे है। खारजा पॉलिसी और सलामती के मामला में अब पार्टीज ने या उनके मंशूरों में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है। बाहर का कैंपेन का ये कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। वो के पार्टियां कहती हैं कि हम मसलों को पूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन चुनावी मुहिम में ये इशू अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आया।
इसके बरक्स इंडिया में हालिया सालों में हुए चुनाव के दौरान खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी को राजनीतिक चाल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी मुखालिफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ राइट विंग हिंदू पार्टियों का समर्थन हासिल कर सकें। दिसंबर में गुजरात और बिहार की रियासतों में हुए चुनाव में भी वज़ीर आज़म मोदी और उनके साथियों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए कांग्रेस से साज बाज कर रहे हैं। सीनियर पत्रकार रजा रूमी कहते हैं,
यही तो कमाल की बात हुई है पिछले चंद सालों में कि इंडिया में पाकिस्तान बैशिंग जो है और पाकिस्तान का बुरा भला कहना अब वो एक अच्छा खासा मकबूल बन गया है इलेक्शन इशू। अगर आप देखें मोदी जी ने जो ये स्टेट इलेक्शंस हुए थे गुजरात में, उससे पहले बिहार में, हर जगह उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और मनीष शंकर अय्यर जो है उनकी पाकिस्तान दोस्ती के बारे में जो बातें उनको इस्तेमाल किया गया एज ए प्रूफ के पाकिस्तान कोई कंस्पिरेसी कर रहा है। तो ये बात तो है ना कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी जो है वो बड़ी है, जबकि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम में इंतहा पसंदी में कमी वाकई हुई है।
इस बरस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना की पोर्ट्रेट पर हुए विवाद के पीछे भी बीजेपी के स्थानीय नेताओं का हाथ था। इम्तियाज आलम कहते हैं कि पाकिस्तान में तो विदेश नीति फौज के हाथ में है, इसलिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं बन सकती।
हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान जुड़ गया है हिंदुत्व की क्रिमिनलाइजेशन के साथ और उसमें सुप्रा जो कॉम्प्लेक्सी है उसका एक तरह का रेफरेंस हवाला बन गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसलिए नहीं आता कि सलामती के खारजा मुल्क के मामला फौज के पास है और लिहाजा सियासतदान इस बारे में बेबस नजर आते हैं और वो इस बात को नहीं उठाते। यही वजह बनी है नवाज शरीफ की हुकूमत के फॉल और बेनजीर की पहली हुकूमत भी शायद इसलिए गई। इसकी बड़ी वजह यही कि जब सियासतदान कोई पहलकदमी करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते और उन्हें मुश्किल का सामना है, लिहाजा हम देखते हैं कि सियासतदान इलेक्शन कैंपेन में ये मसला नहीं उठाते।
पत्रकार रजा रूमी इससे इत्तफाक करते हैं।
मेरे ख्याल से उसकी एक वजह पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सियासी पार्टियां हैं, बड़े सियासतदान हैं, उन सब का तकरीबन एक ही व्यू है इंडिया के ऊपर कि वो समझते हैं कि ज्यादा बेलिजरेंस और जंग का ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बड़ी पार्टियां जैसे कि मियां नवाज शरीफ हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो तो बड़े जोर शोर से अमन के हक में रहे हैं और अभी भी हैं।
इंडिया पाकिस्तान के चुनाव प्रचार का बड़ा मुद्दा तो नहीं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं तस्करा हुआ जरूर है। जैसे पानी की कमी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में इंडिया में बने डैम्स और यहां हुए आर्थिक विकास का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को इंडिया से व्यापार में मुकाबला करना चाहिए। चुनाव मुहिम से कुछ पहले पाकिस्तान में मुंबई हमलों से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान पर भी बहुत लेदे हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये मामला भी चुनाव में कोई अहमियत नहीं ले सका। इम्तियाज आलम कहते हैं कि नवाज शरीफ और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान दोस्ती की गूंज भी चुनाव मुहिम में सुनाई देती रही है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में पाकिस्तान की जनता हकीकत में चिंतित है, लेकिन ये मसला भी चुनाव में नहीं उठाया जाएगा। शुमाइला जाफरी, BBC इस्लामाबाद।
और अब समय है आपकी राय का, यानी आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज सूर्यांशी पांडे एक बार फिर मेरे साथ हैं।
नमस्कार
सूर्यांशी पांडे, आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं आज और ईमेल भी बहुत सारे हैं।
शुरुआत हम ईमेल से करें?
जी।
तो राजेश जी, पहला ईमेल है सिद्दीकी अहमद का, जो मोहब्बतपुर ढाका पूर्वी चंपारण बिहार से लिखते हैं, और उन्होंने दक्षिण कोरिया पर की गई जो दुनिया जहां में विश्लेषण किया गया था वात्सल्य राय के द्वारा, वो उन्हें बेहद पसंद आई। और उन्हीं के साथ साथ अश्विनी कुमार भारतेंदु और सादिक आजमी जो सऊदी अरब से लिखते हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में की गई दक्षिण कोरिया की जो विश्लेषण है उसकी तारीफ की है।
जी हाँ, ये कार्यक्रम हमें भी बहुत पसंद आया, बहुत मेहनत से वात्सल्य राय ने बनाया था। और इसमें जो जानकारी है कि क्यों दक्षिण कोरिया इतनी जल्दी पूरी दुनिया में छा गया, इसके अलावा वहाँ के संगीत की भी बहुत एक झलक थी जो मुझे तो निजी रूप से बहुत पसंद आई।
और एक बहुत ही सुंदर, मैं कहूँगी ईमेल के जो उसके जो लिखा गया है बहुत ही खूबसूरत है, वो आशीष पांडे ने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। और वो ये लिखते हैं कि BBC सुनना उन्हें उतना ही पसंद है जितना अपनी 8 महीने की बेटी के साथ समय बिताना।
क्या बात है, इससे बेहतरीन और कोई प्रशंसा हमारी नहीं हो सकती है। हमारे काम की सार्थकता इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकती है कि कोई श्रोता लिख रहे हैं कि अपनी 8 महीने की बेटी के साथ समय बिताने में उनको जितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा BBC के कार्यक्रम सुनने में लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई।
और मुझे लगता है कि जो सबको अच्छा लगता है वो उसका जिक्र हर पत्र में होता है, वो है रेहान फजल की आवाज़।
जी, हाँ, जी।
तो जीशान नैयर ग्राम तरैया से लिखते हैं, जिला बेगूसराय बिहार से, कि ज्योति बसु के 104वीं जयंती पे की गई विवेचना उन्हें बेहद पसंद आई।
जी हाँ, ज्योति बसु पर जो विवेचना की थी रेहान फजल ने, ऐसी शख्सियत हैं ज्योति बसु कि जिनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हम लोगों को मालूम नहीं होते हैं, वो सब पहलू उन्होंने उजागर किए। उनके जीवन के पुराने लोग जो उनके साथ समय बिता चुके थे, उनकी जबानी ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
और उनकी फरमाइश है कि मौलाना आज़ाद पे विवेचना की जाए।
ये बिल्कुल रेहान फजल तक ये बात पहुँच गई होगी, वो सुन रहे होंगे कार्यक्रम को, तो ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा।
अगला ईमेल है गौतम दत्ता बहादुरगंज किशनगंज बिहार से।
जी हाँ, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, इनकी तो चिट्ठी लगभग हर कार्यक्रम में शामिल होती है। थोड़ा दूसरे श्रोताओं को लगता होगा कि ये जाती भी है, लेकिन बताइए गौतम दत्ता जी ने क्या लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि बुधवार दिनभर की तिगड़ी उन्हें बेहद पसंद आई, राजेश जोशी, वात्सल्य राय और सूर्यांशी पांडे, मेरा नाम भी और बड़े ही खुशनुमा अंदाज में लिखा है उन्होंने कि सच में मजा आ गया।
अरे वाह, बिल्कुल आपकी चिट्ठी पढ़ के हमें मजा आ गया।
वात्सल्य ने साउथ कोरिया के उत्थान की कहानी बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की। खेल समाचार में सूर्यांशी की जोशीली आवाज ने प्रोग्राम का मजा दोगुना कर दिया।
ये देखिए, आप तो अपनी तारीफ पढ़ते हुए हिचक रही हैं। तो देखिए, हमारे श्रोता उन चीज़ों को याद रखते हैं जिन्हें करने में हम कई बार हिचकते हैं कि अरे हम लाइव प्रोग्राम में हंसें तो कैसा होगा। हमको मालूम है हमारे श्रोताओं को ये चीज़ें पसंद आती हैं, हम उनके पास बैठ के ये बात करते हैं और उनके लिए बात करते हैं, इसलिए बहुत इसमें क्लिनिकल और बहुत ही औपचारिक होने की जरूरत नहीं। जहाँ औपचारिकता की जरूरत है हम औपचारिक होते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं से संवाद करने में किस तरह की औपचारिकता।
बिल्कुल, आपने राजेश जी एकदम दिल की बात कही है
जी।
अब अगर आगे जाए तो इसमें सबसे पहला पोस्ट कार्ड है अशोक कुमार ठाकुर का, जो मालीटोल दरभंगा से लिखते हैं।
जी हाँ।
और ये लिखते हैं कि संध्याकालीन सभा में प्रसारित इंडिया बोल में फुटबॉल,
हाँ, क्रिकेट की वजह से फुटबॉल का की कमी हो रही है या फुटबॉल दब रहा है हिंदुस्तान में।
हाँ।
ये इंडिया बोल का विषय था और हम कई श्रोता हमसे शिकायत भी करते हैं कि आप सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, तो हमने सोचा कि खेल जब विश्व कप फुटबॉल चल रहा है तो इस पर चर्चा की जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने उसमें हिस्सा लिया, पसंद भी किया।
और अगला खत है,
अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं।
हाँ।
ये हैं आर के दुबे त्योंधर रीवा मध्य प्रदेश से, और ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बुजुर्ग श्रोता हैं। लिखते हैं कि राहुल गांधी, ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने बयान दिया था कि नोटबंदी से पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने 750 करोड़ रुपए बैंकों से बदले थे, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो अमित जी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये इनका सवाल है। और इनका कहना है कि मोदी जी, जेटली जी और अमित जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो दुबे जी, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं, अनुभवी हैं, ये आपकी राय है, इस पर हम तो क्या जवाब दे सकते हैं। बहरहाल आपकी राय हमने प्रसारित कर दी है और इस पर कोई खबर अगर इसके आसपास कभी कोई होगी तो ज़रूर हम आप तक पहुँचाएंगे। अब मैं आपसे भी इजाज़त लेता हूँ सूर्यांशी जी, और अपने श्रोताओं से भी, क्योंकि समय हो चला है। चिट्ठी लिखिएगा हमें ज़रूर, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार। और अब खेल की दुनिया का हाल सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु पांडे जी। जी, क्या खबरें हैं आपके पास आज?
खबर ये है कि इंग्लैंड का पांचवा विकेट बस थोड़ी देर पहले ही गिर चुका है और जॉश बटलर उसमें आउट हुए। और आज का दिन अगर देखा जाए तो स्पिनर्स के नाम रहा, पहले कुलदीप यादव की आक्रामक गेंदबाजी के बाद युजवेंद्र चहल ने भी अपना खाता खोल लिया है। चहल ने इंग्लिश कप्तान मॉर्गन की रैना के हाथों मिड विकेट पर कैच आउट करवाया और मॉर्गन सिर्फ 19 रन बनाकर के पवेलियन लौटे। हालांकि इस पहली सफलता का श्रेय कुलदीप यादव के अलावा कैप्टन कोहली को भी जाता है, क्योंकि इस गेंद से ठीक पहले ही लेग स्लिप लगाया गया था। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को पहली सफलता मिल गई। कुलदीप यादव ने जसन रॉय को आउट करके बेरस्टो के साथ बन रही इस जोड़ी को भी अलग किया। अब बात करते हैं भारत की बैटिंग की, जिसमें काफ़ी गहराई है क्योंकि लगभग सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं। अगर भारतीय टीम के लिए चिंता की बात है तो केवल शिखर धवन का फॉर्म, जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। उनके अलावा गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का नहीं होना भी भारत के लिए चिंता का विषय है, और उनकी गैर मौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार पर भार बढ़ जाएगा। चोटिल अंबाती रायडू के स्थान पर टीम इंडिया में उनको शामिल किए गए सुरेश रैना के रहने से भारतीय टीम को हो सकता है मजबूती मिले।
जी,
और दिनेश कार्तिक के रूप में भी कोहली के पास मध्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक और विकल्प है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और विदा लेने से पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज पटना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप क्वीन एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री टेरिजा मे से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने आज एक ब्लू प्रिंट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अगले वर्ष मार्च में यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद दोनों के रिश्ते कैसे होंगे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आरोप लगाया है कि संसदीय चुनाव से पहले पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया प्रशांत ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।